From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
By your ben antim denoke santo ke yishi meshi ke girja agar ke 181 way Varshik General Sammelan ke is dopahar ke baad ke 5ve antim satra mein hum aapka swagat karte hain adhyaksh Samuel Monson jo ki sammelan ki adhyakshata kar rahe hain unhone mujhse kaha hai ki main sitra ka sanchalan karun who presides
at this conference has asked that I conduct this session.
हम सभी स्थानों पर गिरजों के सदस्य और कई मित्रों को शुभकामनाएं और आशीष देते हैं जो इन कार्यक्रमों को रेडियो टेलीविजन इंटरनेट या उपग्रह प्रसारण के द्वारा भाग ले रहे
हैं
इस सत्र के लिए संगीत डायगनवाल ग्वारा द्वारा मैक डुलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में होगी लिंडा मार्गेट और बोना गुड लाइफ ऑर्गन बजाएंगी अब गायक माइनली आई सॉ माइटी एंजल फ्लाई का गाना गाएगी फिर सत्र के एल्डर जोसे टशेरा प्रार्थना करेंगे उसके बाद मनली आई एम ट्राइंग टू बी लाइक जीसस गाएगी
Oh. Our Father in heaven,
हमारे स्वर्गीय पिता, हम शुक्र अदा करते हैं उस बड़े आशीर्वाद का जो इस महासम्मेलन में मिला हमें, हमारे सदस्यों के लिए, हमारे दोस्तों को दुनिया भर में, जो हम उसका हम चंगा करने की शक्ति का आशीर्वाद मिला हमें। हम आभारी हैं प्रचारकों के लिए दुनिया भर में। हम मांगते हैं पिताजी कि हमें आशीर्वाद मिले आपके आत्मा का और सुख का, ताकि हम अपने अब भक्ति को बढ़ा पाएं और ऐसे मौक़ों को ढूंढें जो हम दूसरों की सेवा कर पाएं और गॉस्पल का मैसेज बांट पाएं उनके साथ जो हमारे आसपास हैं। हम मांगते हैं पिताजी कि हमारे पैगंबरों को आप आशीर्वाद दें, उसके दो सलाहकारों को और धर्मदूतों की सभा को भी। आप प्रार्थना करते हैं, शुक्रगुजार हैं हम सब आशीर्वादों के लिए, और ये सब करते हैं ईसा मसीह के नाम से, आमीन।
Our first speaker.
इस सत्र के पहले वक्ता 12 प्रेरितों के परिषद एल्डर रिचर्ड जी स्कॉट होंगे. उनके बाद 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर डी टॉड क्रिस्टोफरसन बोलेंगे. एल्डर डी टॉड क्रिस्टोफरसन के बोलने के पश्चात हम 70 के एल्डर कार्ल बी प्रैट से सुनेंगे.
That beautiful message by this magnificent.
So Sundays, so we have heard today. A Monday was a Monday. हमको उन्हें उन्हें प्रेरणा दिया गया है. 16 जुलाई 1953 को मेरी पत्नी जनीन और मेरे में युवा दंपति के रूप में यूटा मेंटी मंदिर में बेदी के सामने घुटने के बाल झुके थे. अध्यक्ष लुईस आर एंडरसन ने मोहरबंदी के अधिकार का उपयोग किया और हमें अनंत के लिए विवाहित पति और पत्नी की घोषित किया था. मेरे पास उस शांति पर और स्वच्छता के बैन नहीं करने की शक्ति नहीं है जो मुझे उस आश्वासन से मिली थी. यदि मैं एकता से जीवन जीता हूँ तो उस पवित्र विधि के कारण जिसे उचित पौरोहित्य के आदर के साथ प्रभु के घर में किया था. मैं अपनी प्रिय जिनिन और अपने बच्चे के साथ हमेशा के लिए हो रहा है. हमारे साथ बच्चे मंदिर के पवित्र विधि के द्वारा हमारे साथ मोहरबंद है. मेरे बहुमूल्य पत्नी जिनिन और हमारे दो बच्चे पर्दे के पार जा चुके हैं. वो हमारे परिवार के बाकी सदस्यों के धार्मिकता से रहने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि हमें मंदिर में प्रतिज्ञा की गई सभी आशीष मिले. विवाह और परिवार स्वर्ग के पिता की आनंद की योजना के दो अनिवार्य स्तंभ है. इन दोनों स्तंभों का महत्व इस तथ्य से पता चलता है कि शैतान परिवार को विभाजित करने और मंदिर धर्मविधियां जो परिवार को अनंतता के लिए जोड़ती है के महत्व को कम करने का लगातार प्रयास करता रहता है. जीवन के अनुभव के साथ मंदिर मोहरबंदी का अभिप्राय अधिक समझ में आता है. यहाँ आपके निकट जाने और अधिक आनंद पाने और नश्वरता का परिपूर्णता से पाने में मदद करता है. एक बार मैंने अपनी पत्नी से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा था. मैं अपने व्यवसाय में अत्यधिक यात्रा करता था. मैं लगभग 2 हफ्ते के लिए बाहर था और एक शनिवार शाम को वापस घर पहुंचा. एक सभा में जाने के लिए मेरे पास 4 घंटे थे. मैंने ध्यान दिया कि हमारी कपड़ा धोने की छोटी मशीन खराब थी और मेरी पत्नी हाथों से कपड़ा धो रही थी. मैंने मशीन को ठीक करना शुरू किया. जिनिन निकट आई और बोली, रिच तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं कपड़े धोने की मशीन ठीक कर रहा हूँ ताकि तुम्हें हाथों से न धोना पड़े. उसने कहा, नहीं जाओ बच्चे के साथ खेलो. मैंने कहा, मैं उनके साथ कभी भी खेल सकता हूँ. मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ. वो फिर बोली, रिचर्ड कृपया जाकर बच्चों के साथ खेलो. जब उसने मुझे अधिकार के साथ कहा तो मैंने उसके कहना माना. मैंने बच्चों के साथ बहुत अच्छी समय व्यतीत किया. हमने एक दूसरे के पीछे किया और पत्थर के पतों पर लड़के. बाद में भी आपने सभा में गया. यदि वह मुझे इस अनुभव से सबक नहीं सिखाती तो शायद मैं उस अनुभव को भूल गया था. अगली सुबह लगभग 4 बजे मैं उठा गया जब दो छोटी बाहों ने मुझे गले लगाया, गाल पर चुमा और इन शब्दों के मेरे कानों में धीरे से कहा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, पिताजी मैं आपसे प्यार करता हूँ. आप मेरे सबसे प्रिय दोस्त हैं. यदि आपको अपने परिवार में इस प्रकार का अनुभव नहीं होता है तो आप जीवन के अलौकिक आनंद में से एक को नहीं पा रहा है. यदि आप उचित आयु के युवक हैं और विवाहित नहीं हो, आपने समय को बेकार को खेजी में न गवाए. जीवन की शुरुआत करें और विवाह करने के पर ध्यान दिए. जीवन के इस मोड़ पर उचित लक्ष्य के पाने के लिए सक्रिय रहें. युवकों एक सम्मानजनक मिशन सेवा करें, फिर योग्य अनंत साथी पाने को सर्वोत्तम प्राथमिकता दें. जब किसी युवती को आपकी रुचि बढ़े, उसे दिखाए कि आप एक ऐसे आसान व्यक्ति हो जिसको बारे में उसे अधिक जानना चाहे. उसे उत्तम स्थानों पर ले जाएं, डेट पर रचनात्मक रहें। यदि आप चाहते हो कि आपकी एक बढ़िया पत्नी मिले, आपको उसके लिए आकर्षित होना होगा। यदि आपको कोई ऐसा मिल जाता है, आप बहुत बढ़िया प्रणय निवेदन और विवाह कर सकते और प्रभु द्वारा स्थापित योग्य बंधनों के अंत तक रहते हुए अनंतता के लिए बहुत बहुत खुश हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं, क्या अपनी पत्नी के साथ मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से विश्वसनीय हैं? दूसरे को साथ ऐसी बातचीत जिसे नहीं चाहते कि आपकी पत्नी सुने में कभी शामिल न होकर, क्या आप अपने विवाह के अनुबंधों के प्रति ईमानदार हैं? क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति दयालु और उनका समर्थन करते हैं? भाइयों, क्या आप अपनों पत्नियों के कहते हैं कि आप उससे कितना अधिक प्रेम करते हैं? ये उसके जीवन में महान आनंद आलायक है। जब मैं आदमियों से इस पूछता हूँ कि कहते हूँ, वह ये जानती है, अब उसको कहना चाहिए। ये शब्द खुलकर स्त्री बहुत अच्छा महसूस करती और आशीषित होती है। जो कुछ आपकी पत्नी आपके लिए करती है, उसके आभार व्यक्त करें। उसे प्रेम और आभार को अक्सर व्यक्त करें। यह उसके जीवन का अधिक संपन्न, बहुत सुखद और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाता है। प्रेम की उन प्राकृतिक अभिव्यक्तियों को न रोकें, और यह अधिक प्रभावशाली होता है जब आप उसे निकल लेकर कहते हैं। क्या आप बच्चों की मदद और घर में कुछ काम करके अपनी पत्नी को सहारा देते हो? क्या धर्मशास्त्र अध्ययन, पारिवारिक प्रार्थना और पारिवारिक घरेलू संध्या जैसी गतिविधियों में पारिवारिक नेतृत्व करते हैं, या आपके लापरवाही के कारण अपनी पत्नी इस काम को करती है? मैंने अपनी पत्नी से इन अभिव्यक्तियों के महत्व सीखा था। आपने अपने विवाह के आरंभ में अक्सर एक संदेश देने के लिए मैं अपने धर्मशास्त्र को खोलता और मुझे स्नेही समर्थन देने वाली टिप्पणियों पृष्ठों के बीच मिलती। कभी कभी इतने स्नेही होते थे कि मुझसे कुछ बोला नहीं जाता था। एक प्रिय पत्नी के वो बहुमूल्य टिप्पणियां दिलासा और प्रेरणा के कारण अमोल खजाना थी और सदा रहेगी। मैं भी उसके साथ वैसे ही करने लगा था, इसे न महसूस करते हुए कि वह यह उसके लिए कितना अनिवार्य था। मुझे याद है कि एक साल हमारे पास उसे वैलेंटाइन दिन के देने के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए मैंने पानी के रंग से फ्रिज को दरवाजे पर एक चित्र बनाने का निर्णय लिया। मैंने एक अच्छा चित्र बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन केवल एक गलती की, वह पानी के रंग नहीं थी लेकिन वरन पेंट था। उसने मुझे इस चित्र को कभी मिटाने नहीं दिया। मुझे याद है कि एक दिन मैंने पंचिंग मशीन से निकले छोटे गोल कागज के टुकड़े को लिया था और उनके ऊपर मैंने 1 से 100 तक संख्या लिखी। मैंने हर टुकड़े को उल्टा किया, उसके लिए एक संदेश लिखा, हर टुकड़े पर एक शब्द। मैंने फिर उन्हें इकट्ठा किया और एक लिफा में डाला। मैंने सोचा वो इस पढ़कर बहुत हंसेगी। उसके मरने के बाद मैंने उसके निजी चीजों में पाया कि उसने हमें दोनों को बीच बांटे गए साधारण संदेश को कितना महत्व दिया था। मैंने देखा था कि उसने हर एक उन गोल टुकड़े को कागज पर चिपकाया था। उसने केवल मेरे संदेशों को संभाला था, लेकिन उसने न केवल मेरे संदेशों को संभाला था लेकिन उसने प्लास्टिक के कवर में उन्हें सुरक्षित रखा। मैं मानो ये बहुत ही कीमती खजाना है। केवल एक चीज है जिसने उसने इनके साथ नहीं रखा था। ये अभी भी हमारी रसोई की घड़ी के कांच से पीछे है। इस पर लिखा था, जिनन तुमसे कहना क्या समय हो गए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यह मुझे हमेशा स्वर्ग के पिता की उस असाधारण बेटी की याद दिलाता है। जब मैं एक साथ गुजारे हमारे जीवन के बारे में सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ हम कितने भाग्यशाली रहे। हमारे घर में हमारे बीच कभी भी बहस या कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया था। अब मैं महसूस करता हूँ इस आशीष उसके कारण आई थी। ये आशीष उसकी स्वच्छ से देने, बांटने और कभी भी अपने बारे में न सोचने का परिणाम था। अपने बाद के जीवन में मैंने उसके नकल करने का प्रयास किया था। मैं सुझाव देता हूँ कि पत्नी और पति और पत्नी के रूप में अपने घर में आप ऐसे ही करें। शुद्ध प्रेम अतुलनीय अच्छाई के लिए प्रभावशाली शक्ति है। धार्मिक प्रेम सफल विवाह के आधार है। यह संतुष्ट वाली भांति विकसित सच्चों के मुख्य कारक है। माँ के धार्मिक प्रभाव को ठीक से कौन माप सकता है? क्या अनंत फल उन बीजों से निकलते हैं जिन्हें एक माँ बच्चे से के विश्वास करने वाले मन और हृदय की उपजाऊ मिट्टी पर ध्यान से पोती और प्रेम से के से पोषण करती है? एक माँ के रूप में आपको अपने बच्चे की विशेष योग्यता और विलक्षण क्षमता को समझने की तीव्र प्रतिभा दी गई है। अपने पति के साथ मिलकर आप इन्हें पोषण बल और विकसित होना का मौका देती है। विवाहित होना बहुत ही आनंददायक है। विवाह शानदार है। समय गुजरने के साथ आप एक जैसा सोचने लगते हो और एक समान विचार और अभिव्यक्ति रखते हो। आपके पास कभी ऐसा समय होता है जब आप बहुत खुश होते हैं, कभी परीक्षा का समय होती है, कभी कष्ट का समय होता है, लेकिन प्रभु आपको उन सभी विकास के अनुभवों में एक साथ मार्गदर्शन देता है। एक रात हमारा छोटा बेटा रिचर्ड, जिसे दिल की समस्या थी, रोते हुए जाग गया। हम दोनों ने इसे सुना। अक्सर मेरी पत्नी उठकर रोते हैं, बच्चे को चुप कराती थी, लेकिन इस समय मैंने कहा मैं उसे देखता हूँ, क्योंकि उसकी समस्या के कारण जब वो रोना शुरू करता था उसका छोटा दिल बहुत जोर से धड़कता था। वह उल्टी करता और विस्तार को गंदा हो जाता था। उस रात मैंने उसके तेजी से धड़कते दिल को आराम पहुंचाने के लिए उसे गोद में उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश की। मैंने उसके कपड़े बदले और नई चादरें बिछाई। जब तक वो सो न गई मैंने उसे उठाए रखा। तब मुझे पता नहीं था कि वो कुछ महीनों की मेहमान है। उस आधी रात को उसे अपने बाहों में उठाने मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब वो मरा था। जैसे जिनीन और मैं अस्पताल से आ रहे थे, हमने गाड़ी के साइड में खड़ा किया। मैंने उस अपने बाहों में लिया। हम दोनों थोड़ा सा रोए, लेकिन हमें महसूस हुआ कि मंदिर में बनाए अपने अनुबंधों के कारण हमें उसे पर्दे के पार फिर से प्राप्त करेंगे। इससे उसे खोने का दुख हमारे लिए कुछ कम हुआ। जिनिन का दया ने मुझे बहुत से बहुमूल्य चीजें सिखाई थी। मैं बहुत परिपक्व था और वह बहुत ही अनुशासित और बहुत ही आत्मिक था। विवाह स्वार्थी अपने बारे में सोचने की प्रकृति को बदलने के लिए आदर्श परिवेश देता है। मैं सोचता हूं कि हमें जल्दी विवाह करने की सलाह इसलिए दी जाती है ताकि चरित्र में अनुचित गुणों का विकास न हो जिनके बारे में बदला मुश्किल होता है। मुझे उस पुरुष के लिए दुख महसूस होता है जिसने अभी तक अनंत साथी को पाने का प्रयास नहीं किया, और मेरे दिल उन बहनों के लिए रोता है जिन्हें अभी तक विवाह करने का मौका नहीं मिला। आप में से कुछ अकेलापन और परेशानी महसूस करते हैं और यह समझ पाना कठिन है कि कैसे आपको विवाह और बच्चों या अपने परिवार को आशीष मिलेगी। प्रभु के लिए हर बात संभव है और वह अपने उन वादों की पूरा करते हैं जिनकी घोषणा करने के लिए वह अपने भविष्य वक्ताओं को प्रेरित करता है। अनंतता अतः लंबा समय है। उन वादों में विश्वास रखें और उनके योग्य जीवन जिएं ताकि आप अपने समय में प्रभु इन्हें आपके जीवन में पूरा करे। सचमुच में आपको वादा की गई हर आशीष मिलेगी जिसके आप योग्य होंगे। कृपया मुझे अपने बहुमूल्य पत्नी जिनिन के विषय में बोलने के लिए क्षमा करें, लेकिन हम अनंत परिवार हैं। मैं अपनी प्रिय पत्नी जिनिन से प्रेम करता हूँ। वो हमेशा बहुत अधिक खुश रहती थी और अधिकतर यह खुशी दूसरों की सेवा करने से आती थी। जबकि वह बहुत बीमार थी, आपने सुबह की प्रार्थना में आपने स्वर्गीय पिता से कहती उसे किसी की मदद करने के लिए दिशा दिखाए। उसकी सच्ची प्रार्थना कई बार पूरी हुई थी। कई लोगों के बोझ कम किए गए थे, उनके जीवन में उजाला हुआ था। प्रभु के हाथों में औजार बनने के कारण वह निरंतर आशीष हुई थी। मैं जानता हूँ स्वर्गीय पिता की बेटी जिसमें महिमा और श्रद्धा से आपने स्त्री होने की अंतशक्ति को परिपूर्ण किया था से प्रेम करने का क्या होता है। यद्यपि वह पर्दे की उस पार है, हमारा एक दूसरे के प्रति प्रेम और प्रशंसा निरंतर बढ़ता और विकसित होता जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब भविष्य में उस पर्दे के पार देखूंगा उसे देखूंगा हम पाएंगे कि हम और अधिक गहरा प्रेम करने लगे। पर्दे के कारण इतने समय तक अलग रहने के कारण हम एक दूसरे को और अधिक चाहेंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
Our heavenly Father,
स्वर्गीय पिता की हमसे बड़ी उम्मीदें हैं। उन उम्मीदों को ईसा मसीह ने ऐसे समझाया, मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध बनो जैसे मैं या तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध हैं। वो हमें पवित्र बनाना चाहते हैं ताकि हम स्वर्गीय महिमा सहन कर पाए और उनकी उपस्थिति में फिर लौट पाए। इसलिए क्या करना जरूरी है ये उन्हें पता है। इसे मुमकिन करने उन्होंने हमें आज्ञा, करार, पवित्र आत्मा की देन और सबसे महत्वपूर्ण उनके बेटे की क्षतिपूर्ति और मृत्युत्थान दिया है ताकि हमारा परिवर्तन हो पाए। ईश्वर का उद्देश्य है कि उनके बच्चे सर्वोत्तम खुशी पाए, उनके साथ सदा रहे और उन जैसे बने। काफी साल पहले एल्डर डैरन ओक्स ने समझाया, आखिरी निर्णय सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे कर्मों की गणना नहीं है, वो हमारे कर्मों की और विचारों का प्रभाव द्वारा हम क्या बने हैं इसकी स्वीकृति करना है। लापरवाही से कार्य करना काफी नहीं है। आज्ञा पालन, विधियां और सुसमाचार के कराया ऐसी बातें नहीं है जो किसी स्वर्गीय खाते में जमा होती है। ईसा मसीह का सुसमाचार एक योजना है जिसके द्वारा हम वो बन पाएंगे जो हमारे स्वर्गीय पिता हमारे लिए चाहते हैं। दुख की बात है कि ज्यादातर ईसाई नहीं मानते कि ईश्वर उसके भक्तों से कुछ अपेक्षा भी करता है। वो उसे एक सेवक के रूप में देखते हैं जो पुकारने पर उनकी सहायता करने आता है, या थेरेपिस्ट जो उन्हें अच्छा महसूस करने देता है। इस तर्क में लोगों को जिंदगी में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी ने लिखा है, इब्रानियों का ईसाई ईश्वर उनसे सिर्फ प्रतिज्ञा नहीं पर जान भी मांगता है। बाइबल का ईश्वर जिंदगी और मौत के सौदे करता है, कोमलता के नहीं, जीवन त्याग की अपेक्षा करता है, लापरवाह प्रवृत्ति नहीं। मैं एक प्रवृत्ति और हुनर के बारे में बात करना चाहता हूँ जो हमें ग्रहण करनी पड़ेगी स्वर्गीय पिता की ऊंची अपेक्षा पूरी करने। वो है खुशी से डांट स्वीकार करना और उसे मांग भी लेना। सुधार जरूरी है जीवन को मसीह के अनुकूल सिद्ध बनाने। पौलुस ने इस दिव्य सुधार को या डांट के बारे में यह कहा है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसे वो डांटता भी है। हालांकि यह सहना मुश्किल है, हमें खुशी होनी चाहिए कि ईश्वर ने हमें डांटने के लायक समझा और वह करने उसने वक्त भी निकाला। दैवी ताड़नी ये के तीन मकसद हो सकते हैं, एक पछताने के लिए अनुग्रह, दो हमें शुद्ध और पवित्र बनाने, और तीन मार्ग बदल कर बढ़िया मार्ग की ओर निर्देशन करने। पहले पश्चाताप पर गौर करें, माफी और सफाई के लिए ये जरूरी है। प्रभु ने कहा, जिनसे मैं प्यार करता हूँ उन्हें डांटता हूँ और ताड़ना देता हूँ, इसलिए पछताओ। और कहा है, आज्ञा पालन सीखने तक उन्हें अनुशासित करना पड़ेगा, चाहे वो उन बातों के द्वारा हो जो वो भुगतेंगे। अनुवर्ती दोनों के इल्हाम में प्रभु ने गिरजे के चार उच्च अधिकारियों को पछताने की आज्ञा दी, क्योंकि उन्होंने घर में लापरवाही जताई अपने बच्चों को पर्याप्त रूप से आज्ञा अनुसार सच्चाई सिखाने में। मॉर्मन की किताब में जारेड के भाई पछताया जब तबू ने उसे मेघ में के बीच 3 घंटे बात की और उसे धुटकारा क्योंकि वह प्रभु का नाम पुकारने भूल गया था। प्रभु की वह सख्त डांट उसने खुशी से स्वीकार की, इसलिए बाद में प्रभु को देखने का और उससे आदेश पाने का उसे अधिकार प्राप्त हुआ। प्रभु की ताड़ना द्वारा पछतावा होता है, उससे हमारी नेकी बढ़ती है। ताड़ना पश्चाताप को उत्तेजित करता है और उसे स्वीकार करने का अनुभव हमें सिद्ध बनाता है, हमें अधिक आत्मिक उपहारों के काबिल बनाता है। प्रभु कहता है सभी बातों में मेरे लोगों का परीक्षण होना चाहिए ताकि वो महिमा के काबिल बने जो उनके लिए तैयार है। जो मेरी ताड़ना स्वीकार नहीं करेगा वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। ये भी कहा है जो ताड़ना सहन नहीं करेगा पर मुझे नकारेगा वो पवित्र नहीं बन सकते। आलमा के साथियों ने हिलम में जायन का समूह स्थापित किया था पर उन्हें बंदी किया गया। उन्होंने नेक कार्य किए थे, उस यातने के लायक उन्होंने कुछ नहीं किया था, फिर भी प्रभु ने उसको लोगों को ताड़ना के योग्य समझा, उनसे सब्र और भक्ति की परीक्षा ली। पर जो प्रभु में विश्वास रखेंगे उन्हें आखिरी दिन उठाया जाएगा, और उन लोगों के साथ वैसे ही हुआ। प्रभु ने उन्हें शक्ति देकर उनकी यातना इतनी आसान की कि उनके पीठ पर का बोझ उन्हें हल्का लगने लगा, और वक्त गुजरते उन्होंने उन्हें राहत भी दिलाई। वह उस अनुभव द्वारा उनकी भक्ति मजबूत बनी और उनका प्रभु के साथ एक अनोखा बंधन बना। ईश्वर एक और ताड़ना या सुधारक तरीका इस्तेमाल करता है हमें ऐसे भविष्य के और निर्देशन करने जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एल्डर ह्यू बी ब्राउन ने एक व्यक्तिगत अनुभव बताया जो 12 धर्मदूतों के समूह में थे और पहले प्रधानों में उस वक्त सलाहकार थे। कई साल पहले उन्होंने कनाडा में एक टूटा फूटा खेत खरीदा था। जैसे वो उसे साफ कर रहे थे, उसकी मरम्मत कर रहे थे, उसे एक 6 फुट से ज्यादा ऊंचा बेर का पेड़ मिला। वो बेर पैदा नहीं कर रहा था, इसलिए उसने उसे लगभग जड़ तक घटाया। जड़ के पास उसे हर एक डंडे पर आंसू जैसी बूंद नजर आई, जैसे रोते हुए वो पेड़ कर रहा था, तुमने मेरा नाश क्यों किया, मैं कितना बढ़िया उग रहा था, अब तुमने मुझे घटा दिया है, अब उपवन का हर वृक्ष मुझे नीचा दिखाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने सोचा तू माली है यहाँ पे। एल्डर ब्राउन ने जवाब दिया, देख छोटी छाड़ी, मैं यहाँ माली हूँ, मैं जानता हूँ मुझे तुझे क्या बनाना है, मुझे तेरे तुम्हें फल का या छांव का पेड़ नहीं बनाना है, मुझे तेरे बेर की झाड़ी बनाना है। और जब तू भेद फूलेगा तो कहेगा, शुक्रिया माली जी, तूने मुझ पर इतना प्यार किया कि तूने मुझे घटाया। कई साल बाद एल्डर ब्राउन इंग्लैंड में कनाडा की सेना में अफसर था। जब एक बड़ा अफसर शहीद हुआ, एल्डर ब्राउन की भावी थी सेनापति बनने, पर उसे लंदन बुलवाया गया। एल्डर ब्राउन पूरी तरह उस तरक्की के योग्य था, पर मॉर्मन होने की वजह से उसे ठुकराया गया। जैसे ही महासेनापति ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुझे तरक्की मिलनी चाहिए पर मैं वो तुझे नहीं दे सकता, इसलिए इसके लिए तैयारी और आशा हर और प्रार्थना एल्डर ब्राउन ने 10 साल से की थी। वो तरक्की उन्हें हाथों से निकल गई। वो उसे वापस बुलाया था, वो रेलगाड़ी में चढ़ा और वापस निकला, टूटे दिल से, दिल में कड़वापन लिया। जब मैं तंबू पहुंचा, मैंने बिस्तर पर टोपी फेंकी, मुट्ठी बनाकर स्वर को हिलाते कहा, ईश्वर तू ऐसे कैसे कर सकता है, मैंने सब कुछ किया है इस काबिल बनने, ऐसी कोई बात नहीं की जो मुझे करनी थी, मैंने नहीं की है, तब ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। फिर मैंने आवाज़ सुनी, میں نے وہ پہچانے, وہ میری ہی آواز تھی اور وہ کہہ رہی تھی میں یہاں مالی ہوں, میں جانتا ہوں مجھے تجھے کیا بنانا ہے. یہ وہ کڑواپن میرے روح سے نکل گیا اور میں نے ایک شمع مانگی. اب لگ بھگ 50 سال بعد میں ایشور سے کہتا ہوں شکریہ مالی جی, تو نے مجھے گھٹایا, مجھے اتنا پیار لیا کہ مجھے ٹھوس پہنچائی. ایشور کو پتا تھا کہ یوبی براؤن کو کیا بنانا ہے. ایشور نے اس کا مارگ بدلا اسے پوتر دھمودوت کے لیے تیار کرنے. اگر ہم ہاردک اچھا اور پریاس کریں سوگیہ پتا کی اونچی امانوں کے قابل بننے تو وہ ہمیں سہایتا دیں گے, چاہے وہ آرام ہو طاقت, اگر اسے سویکار کرنے کی تیاری ہو. سدھار کئی الگ الگ طریقے سے آ سکتا ہے اور استوتر سے آ سکتا ہے. پرارتھنا کرتے ہوئے ایشور ہمارے دل میں پوتر آتما دوارا سمپرک کر سکتا ہے. کچھ پرارتھناؤں کا جواب ہوتا ہے نہ یا ابھی نہیں, انپیکشت روپ سے بھی آتے ہیں. ہمیں شاستر پڑھتے ہوئے تاڑنا مل سکتی ہے, ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کمیوں, آگیا بھنگ یا لاپرواہی کے بارے میں. سدھار دوسروں کے دوارا بھی آ سکتے ہیں, خاص طور پر ان سے جنہیں انہوں نے ایشور نے تمہیں پریرنا دینے نیوکت کیا ہے, جیسے دھرمدوت پیغمبر اور بشپ. یہ آج بھی پراچین کالوں جیسے گرجے میں سنتوں کے سدھ بنانے ہیں. شاید اس سمیلن میں بتائی کچھ باتیں تمہیں پچھتانے کے لیے پکار رہی ہو. تاڑنا ماننے سے تمہاری وردھی ہوگی. ہمیں گرجے کے سدسیہ ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے کی سہایتا کر سکتے ہیں. یہ گرجا استھاپت کرنے کا مسیحا کا ایک خاص وجہ ہے. سدھار نمرتا سے ہمارے جیون میں بھی آ سکتا ہے. ایلڈر رچرڈ جی اسکاٹ, جس نے ابھی پروچن دیا, نے بتایا ہے کہ شادی کے شروعات میں ان کی پتنی جنین نے انہیں بات کرتے ہوئے لوگوں کی اور دیکھنے کی صلاح دی. کہا تم ہر طرف دیکھتے ہو, زمین پر یا دیوار پر آنکھوں میں نہیں. انہوں نے وہ نمبر سدھار دل سے لیا اور اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو صلاح دینے میں ادھک پربھاوشالی بنے. میں پدھاؤ اسکاٹ کے نردیشن میں پرچارک تھا اور میں بیان دے سکتا ہوں کہ وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے سیدھا آنکھوں میں دیکھتے ہیں. یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جب کسی کو سدھار کی ضرورت ہو وہ نگاہ انہیں چیر دیتی ہے. ماتا پتا کو بچوں کو سدھارنا چاہیے, ضرورت پڑے تو ڈانٹنا بھی چاہیے تاکہ بچے بنا نردیشن شیطان کے قبضے میں نہ آئے. پردھان بوائڈ کے بیکر نے کہا ہے کہ جو سدھارنے کی جواب دہی ٹالتا ہے یا اسے تیاگ کرتا ہے وہ خود غرض ہے. پر یاد رکھو کہ ڈانٹ وقت پر ہونی چاہیے, تیورتا اور اسپشٹتا سے, تبھی جب پوتر آتما اکساتی ہے, اور بعد میں اس کی اور پیار بڑھانا چاہیے تاکہ وہ تمہیں دشمن نہ مانے. پربھو نے جوزف سمتھ اور دوسروں کو ڈانٹا تھا. گھر میں پرایا پروپ سے سسماچا کی شکشا نہ دینے کے لیے, پر اس نے بعد میں انہیں کہا میں تمہیں دوست پکارتا ہوں کیونکہ میں تم سے دوست ہوں. یاد رکھو اگر ہم سدھار ٹھکرائیں گے لوگ وہ دینا بند کریں گے تمہاری اور پیار ہوتے ہوئے بھی. اگر تم بار بار پیارے اشوا کی تانڈا نہیں مانو گے وہ بھی بھوکے گا. اس نے کہا ہے میری آتما سدا انسان کے ساتھ نہیں رہے گی. ایلڈر جوزف دی وٹلن نے خود کے کو شدھ اور نمبر بنانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا. وہ اپنے ہر سوپے کاریہ کے بعد وشیشلن کرتے تھے. ایشور کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے سنکلپ کیا تھا کہ ہر سوپے کاریہ کو اگلی بار اچھی طرح کیسے کیا جائے. ہم سب ایشور کی اونچی امیدیں ستشت کر سکتے ہیں ہماری شمتا یا کوشلیا جتنی بھی ہو. مرونی کہتا ہے اگر تم سب ایشور کے سے پورے تن من اور شکتی کے سے پیار کرو گے تو پھر اس کی انوگرہ کافی ہے اور اس کے دوارا تم مسیح جیسے سدھ بن سکتے ہو. ہمیں بھکتیشیل کوشش کرنی چاہیے اس انوگرہ کو گرہن کرنے کی. میں کوشش میں ایشور کی تارنی سویکار کرنا उसे मानना और पछताना शामिल है। हम उस प्यार के लिए सुधार के लिए दुआ मांगते हैं। मेरी दुआ है ईश्वर तुम्हें उसकी ऊंची अपेक्षा पूरी करने कोशिश में सहायता देगा और वो पूरी खुशी जो स्वाभाविक रूप से आएगी। मैं जानता हूं कि हम परमेश्वर और मसीह के साथ कैसे हो सकते हैं। मैं स्वर्गीय पिता उसके प्रिय बेटे और उनके द्वारा मुमकिन क्षमता का बयान देता हूं, जो उनके द्वारा हमें मुमकिन है। ये बयान मैं बेहिचक देता हूँ ईसा मसीह के नाम से। आमीन।
मैं धार्मिक पूर्वजों का आभारी हूँ जिन्होंने घर में अपने बच्चों को गॉस्पल के बारे में सिखाया। आइडा जेपर्सन मेरी नानी और जॉन ए वर्टन मेरे नाना थे। वे कॉलोनिया हुआरस चियोवा मेक्सिको के छोटे से समाज में रहते थे। वर्टन बच्चों को नियम और अपने माता पिता के उदाहरण द्वारा सिखाया गया। मैक्सिको में 1920s के शुरुआत का समय कठिन था। कुछ समय पहले ही हिंसक क्रांति का अंत हुआ था। बहुत ही कम पैसों का लेन देन था और ज़्यादातर वो चांदी के सिक्के थे। लोग अपना व्यापार ज़्यादातर चीज़ों या सेवाओं के लेन देन से करते थे। गर्मियों के अंत में एक दिन नाना जी जॉन 100 पैसों के साथ घर आए पशुओं के बेचने से। उन्होंने वो पैसा आइडा को दिया ताकि बच्चों के स्कूल के खर्चा हो पाए। आइडा ने धन्यवाद दिया लेकिन जॉन को याद दिलाए कि उन्होंने उन गर्मियों में टाइथिंग नहीं दी थी। उनके पास कोई पैसों की आमदनी नहीं थी लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि पशुओं ने उन्हें मांस अंडे और दूध मिला था और उन्हें अपने बगीचे से फल और सब्जियां मिली थीं। आइडा ने कहा कि वो पैसा बिशप को दे देना चाहिए टाइथिंग के लिए। जॉन थोड़े से निराश थे क्योंकि उस पैसों से उनके बच्चों के स्कूल जाने में मदद मिलती, लेकिन वे पूरी तरह सहमत थे कि टाइथिंग देनी थी। वे उस भारी थैले को टाइथिंग ऑफिस ले गए और बिशप के साथ टाइथिंग का भुगतान कर दिया। कुछ ही समय बाद उन्हें पता चला कि एक अमीर व्यापारी मिस्टर होर्ड यूनाइटेड स्टेट्स से अगले हफ्ते कई लोगों के साथ पहाड़ों में कुछ दिन शिकार और मछली पकड़ने के लिए आने वाले थे। नाना जी जॉन उन लोगों से कॉलोनिया हुआरेज के पास रेलवे स्टेशन पर मिले। उनके पास उन लोगों का सामान पहाड़ों में ले जाने के लिए घोड़े और आवश्यक जानवर थे। अगला हफ्ता उन्होंने लोगों को घुमाने में और कैंप और जानवरों की देखभाल में बिताया। हफ्ते के अंत में US वापस लौटने के लिए वे लोग रेलवे स्टेशन वापस आए। उस दिन जॉन को उनकी तनख्वाह मिली और एक चांदी के पैसों के सिक्कों का एक थैला मिला उनके लोगों के खर्चे के लिए। अपने काम करने वाले लोगों को तनख्वाह देने के बाद जॉन ने बचे पैसे मिस्टर होर्ड को लौटा दिया, जो आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने वो पैसा अपने लिए नहीं रख लिया था। उन्होंने जॉन से पूछताछ की, जानने के लिए कि सब खर्चों का भुगतान हो चुका था। ट्रेन की सीटी बची, मिस्टर होर्ड जाने के लिए मुड़े, फिर वापस मुड़े और सिक्कों के भारी थैले को जॉन की ओर फेंक दिया। ये लो, इसे घर ले जाओ अपने लड़कों के लिए। जॉन ने थैले को पकड़ा और वापस कॉलोनिया हुआरेज के लिए निकल गए। उस शाम जब परिवार खाने के बाद यात्रा की कहानियां सुनने के लिए जमा हुआ, जॉन को उस थैले का ध्यान आया और उन्होंने उसे लाकर टेबल पर रख दिया। जॉन ने कहा कि वे नहीं जानते थे कि बैग में कितना था, तो मजे के लिए बैग को टेबल पर खाली कर दिया गया। बड़ा ढेर था और जब उसे गिना गया तो पूरे 100 चांदी के पैसों थे। जरूर माना गया कि मिस्टर होर्ड की यात्रा एक आशीर्वाद थी। जॉन और उनके लड़कों की अच्छी तनख्वाह कमाई थी लेकिन 100 पैसों की याद दिलाती थी रकम की टाइथिंग को पिछले हफ्ते दी गई थी। कुछ लोगों के लिए ये एक संयोग हो लेकिन वर्टन परिवार के लिए ये प्रभु से पाठ था कि वे अपने वादे रखते हैं उनसे जो अपनी टाइडिंग भक्ति पूर्वक देते हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि यह पहाड़ों में शिकार और मछली पकड़ने के लिए घुड़सवारी की यात्रा के बारे में थी, और मुझे प्यारी थी क्योंकि इससे सीख मिलती है कि भगवान के आदेशों का पालन करने से आशीर्वाद मिलता है। टाइडिंग के बारे में कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला, तुम देखोगे कि टाइडिंग की रकम कितने पैसे थे उससे संबंधित नहीं थी। वर्टन्स ने अपनी पहली पैसों की तनख्वाह को टाइडिंग देने के लिए निश्चय किया, क्योंकि वे पशुओं और फल और सब्जियों से अच्छे से रहे थे। वे प्रभु को उनके आशीर्वाद के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहते थे। ये याद दिलाती है जब प्रभु ने पूछा था कि आदमी भगवान से चोरी करेगा, फिर भी तुमने मुझसे चोरी की है। लोगों ने पूछा हमने आपसे चोरी कहाँ की है, और प्रभु ने जोर से आवाज दिया टाइद और भेंटों में, हाँ भाइयों और बहनों, जिस तरह जॉन और आइडा वर्टन ने कई दशकों पहले ये बात समझी थी, उसी तरह हम सभी प्रभु के कर्जदार हैं। हम पर भगवान को चोरी करने का दोष ना लगे, हम ईमानदार होकर प्रभु के प्रति अपना कर्ज भरना चाहिए। वे केवल 10% मांगते हैं। ईमानदार होकर टाइडिंग देने से हम अपने लोगों के साथ भी ईमानदार होंगे। अगली बात जो मुझे इस कहानी से पता चलता है कि मेरे नाना नानी जी ने अपने परिवार के लिए कम धन होते हुए भी टाइडिंग दी। उन्हें प्रभु की आज्ञा का पता था। उन्होंने स्क्रिप्चर्स का अपने जीवन वे नहीं जाते हैं कि हम अपने ज्यादा या बचे कुचे पैसों से टाइडिंग दें, लेकिन सबसे पहले आमदनी से टाइडिंग दें, भले ही वो ज्यादा हो या कम। प्रभु ने कहा है कि टाइडिंग के मामले में इसको तुरंत दे देना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि टाइडिंग को सबसे पहली चीज दे देना चाहिए, बल्कि ये केवल तरीका है। हम मेरे वर्टन नाना जी और नानी जी से सीखते हैं कि टाइडिंग पैसों से संबंधित नहीं है। वे हमसे आशीर्वादों का वादा करते हैं यदि हम उनके आज्ञाओं का पालन करें। स्पष्ट है कि जॉन और आइडा वर्टन टाइडिंग देने में गहरे विश्वास दिखलाया। हमें अपने बच्चों को टाइडिंग सेटलमेंट्स के लिए ले जाना चाहिए, ताकि वो हमारा उदाहरण को और हमारे प्यार प्रभु के लिए को देख सकें। मेरे नाना नानी जी की कहानी में गलत अर्थ निकाला जाया जा सकता है। कोई सोच सकता है कि क्योंकि हम टाइडिंग पैसों से देते हैं, इसलिए प्रभु हमें पैसों से आशीर्वाद देंगे। मैं जब छोटा था तो ऐसा सोचता था। मैंने सीखा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। जो टाइडिंग देते हैं, प्रभु उन्हें आशीर्वाद का वादा करते हैं। वे वादा करते हैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर इतना आशीर्वाद देंगे कि उसे पाने के लिए जगह नहीं होगी। यदि हम टाइडिंग देंगे तो हमें जिंदगी की जरूरतें की कमी नहीं पड़ेगी, लेकिन वो हमें धन का वादा नहीं करते हैं। पैसे और बैंक अकाउंट्स उनकी सबसे अच्छी आशीर्वाद नहीं हैं। वे हमें ज्ञान के साथ आशीर्वाद देते हैं कि किस तरह हम अपने धन को अच्छे से इस्तेमाल करें। इसलिए विश्वास करने वाले टाइद देने वालों को वो आशीर्वाद देते हैं। मैंने सीखा है कि प्रभु की सबसे बढ़कर आशीर्वाद आत्मिक होती हैं, और ज्यादातर वो हमारे परिवार, दोस्त और गॉस्पल के संबंधित होती हैं। वे कई बार आशीर्वाद देते हैं ताकि हम स्पिरिट के प्रति और अधिक संवेदनशील बने। शादी और परिवार संबंधित विषयों में जैसे बच्चों को बड़ा करना। ऐसी आत्मिक संवेदनशीलता से हम घर में शांति के आशीर्वाद का आनंद उठा सकते हैं। प्रेसिडेंट जेम्स ई फाउट ने सुझाव दिया कि टाइडिंग देना तलाक के विरुद्ध सर्वोत्तम बीमा है। टाइडिंग देने से हमारा दिल विनम्र बनता है और ये आभारी उनके हाथ सभी चीजों में दिखलाता है। टाइडिंग देने से हमारा दिल उधार और माफी देने वाला बनता है और मसीह के शुद्ध प्यार से भरा हुआ दयालु बनता है। हम प्रभु की इच्छा का पालन करने और दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक बनते हैं। नियमित रूप से टाइडिंग देने वालों का प्रभु ईसा मसीह में विश्वास बढ़ता है और वे उनके गॉस्पल और चर्च की एक पक्की टेस्टिमोनी पाते हैं। इनमें से कोई आशीर्वाद पैसों संबंधित नहीं है। मैं गवाही देता हूं कि जैसे हम अपनी टाइडिंग धार्मिक रूप से देंगे, प्रभु स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर हमारा ऊपर अपनी सबसे बढ़कर आशीर्वाद देंगे। ईसा मसीह के नाम में आमेन।
The choir and congregation.
अब choir और congregation गाएंगे, Come ye children of the Lord. और गाने के बाद हम सुनेंगे Lynn Elder Lynn G. Robinson
और Benjamin DeHoyos सुनेंगे, जो 70 के हैं। उनके बोलने के बाद में Elder Jeffrey R. Lahorn, जो Quorum of the 12 Apostles के हैं, वो हमसे बोलेंगे।
This is the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
To be or not to be.
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. सचमुच यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है. उद्धारकर्ता ने प्रश्न बहुत गहन तरीके से पूछा था. हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रश्न बन गया है. तुम्हें किस तरह से का व्यक्ति और औरत होना चाहिए. मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरी तरह मैं हूं होना क्रिया का व्यक्तिमान वर्तमान काल है. उसने हमें काम का नाम और उसकी प्रकृति को अपने ऊपर लेने का निमंत्रण दिया है.
To be and to do are inseparable.
होना और करना अविच्छेद्य है. जैसे सिद्धांत पर एक दूसरे निर्भर एक दूसरे को प्रोत्साहन देता करते हैं. विश्वास किसी एक को प्रार्थना करने के प्रेरित है उदाहरण के लिए, और प्रार्थना किसी और को विश्वास को बल देते हैं. उदारकर्ता लगातार अनिश्चय से कहा है जो सही काम करते हैं परंतु उनकी प्रकृति उनके साथ नहीं होती है. उसे ढोंगी कहती हैं कि ये लोग होठों से तेरा मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन दिल मुझसे दूर रहता है. अच्छा करना बिना अच्छाई के ढोंगी कपड़ी होता है या बहाना हौज करना होता है. ये एक बहानेबाज है.
Be without do really isn't being. It is self-deception, believing oneself.
ये अपने आप को एक छल करना है क्योंकि सेवा से एक उद्देश्य हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है. अच्छा करते रहने से हम दूसरे को अपनी तस्वीर दिखा सकते हैं, पर करने से दिल से नहीं करने से हम अपने आप को अपनी गलत झलक दिखाते हैं. मसीह ने कहा है कि ये पट्टी शास्त्रियों और फारसियों तुम पर हाय हो. तुम पौधने और साफ और जीने से तश्व अंश देते हो पर तुमसे व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और व्यवसाय को छोड़ दिया है. यदि भी उन्होंने उन्हें अच्छा करने की महत्व को पहचाना था, उदारकर्ता ने उसे अच्छा बनाने की व्यवस्था की गंभीर बातों से पहचान करे. अच्छा बने रहने की महानता के महत्व को निम्नलिखित उदाहरणों के सहित. बपतिस्मा के पाने में जाने से ऐसे कुछ करें. सैक्रामेंट को लें, उससे नए से हमें उसको लेने के लिए योग्य बने. उस अधिक महत्वपूर्ण कारण है. हम में से कई लोग एक ऐसी कहानी बनाते जिनसे हमें करना है, पर उसे होना जरूरी है. ऐसे काम करना है जो सिर्फ एक तरह से चीजें हमें करना है, पर जो एक तरह से हमें होना है उसे हमें हमेशा हमें काम करते रहना है. एक अच्छा व्यक्ति बनना एक समय की काम नहीं, उसे धीरे धीरे कहा जाता है. एक माँ बाप के रूप में मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं बच्चों की मदद कर सकता हूँ. एक अच्छे माता पिता के रूप में मसीह के समान रखना दिख नहीं सकता, परंतु वह प्रभाव है जिसे हम करते हैं जो दिख सकेगी. जब हम अभिभावक बच्चे को जलाने सिखाते हैं, जैसे हम उन्हें दिखाते हैं, उनसे वो हमारे प्यार को देख सकता है. हर दिन उन्हें उनके जो काम होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और उनका व्यवहार भी बदलता है. और काम करने से हम अच्छा बन सकते हैं. जब बच्चा असभ्य व्यवहार करते हैं तो कहते हैं एक दूसरे के साथ लड़ते हो तो वह अपने बार को अनुशासन से भाग जाते हैं. वे कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं, परंतु काम करना उनका व्यवहार सिर्फ एक लक्षण है उनके अंदर के हृदय का. हमें अपने आप से शायद पूछें विशिष्ट गुण क्या है यदि बच्चे द्वारा समझा जाए कि भविष्य में ये इस व्यवहार को सुधारा जाएगा. हमें एक दूसरे से प्यार करके शांति को लाना है. इन चीजों को माता पिता बच्चों को कैसे सिखाएं. हमें मसीह की तरह चीजों अपने बच्चों को सिखाने के लिए कभी भी मौका इससे बढ़िया नहीं मिलेगा. उनको आज्ञा पालन अनुशासन के साथ में हम मसीह की तरह बना सकते हैं. हम मसीह के चेले बन सकते हैं.
By gentleness and meekness and by love unfeigned, by kindness and pure knowledge. These are
مسیح کی طرح ہونے کے گن ہیں جو دان کا ہے دیا کا ہے اور اسی کے پرکار ہم ان کے چیلے بن سکتے ہیں انوشاسن کے دوارا بچے ان کو سیکھتا ہے اور وہ غلطیوں کو صحیح چیزوں میں پریورتت کرتا ہے اگر وہ بچہ غلط کرتا ہے بچے سے پوچھو کہ اس نے کیا غلطی سیکھی ہے اور اس پرکار وہ ان کے جیون کو بدل سکے گا ایلما نے اس نیم کو جانا جنہوں نے کہا کہ لوگوں کو اچت کار کروانے کے لیے وانی کا پرچار بھاری عرصہ کارک ہوتا ہے ہاں یہ لوگوں کے لیے ویوے کی تلوار اس طرح کی کنی بات کی ادھک شکتی میں یا پربھات پورن ہوتا ہے کیوں کیونکہ تلوار سے ویوہار کو ڈنڈے میں کیندرت ہوتی ہے یدپی شبدوں کا پرچار کرنے کے لوگوں کی پرکتی کو بدل دیتا ہے جب وہ یہ تھے یا ہو سکتے ہیں جو ایک اچھا کاریہ ہوتا ہے جب ایک بچہ آپ کے دھیرے کو آزماتا ہے اس کے باوجود اگر آپ پہلے جیون کا غلط سے ہیں اور آپ کا یہ پریمان ہے یدی آپ سوچیں ادھک چنوتی بھرا بچہ آپ کو آشیش لگے اور آپ کی مسیح کی طرح بننے کا موقع آپ کو دیتا ہے کس بچے کے ساتھ آپ دھیرے اور لمبی پریشانی مسیح کی طرح بننے کا سداچار کی پریشا انتی اور نرمل ہوں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی اس بچے کی آوشکتا ہو جتنا اس بچے کو آپ کی ہے ہم سب نے اس صلاح کو سنی ہے کہ پاپ کی نندہ نہ کریں پاپ کی کریں ایسے ہی کہ ہمیں بچے کا سروے کرتے ہیں ہمیں دھیان رکھ سکیں ایسا کچھ نہ کہے کہ انہیں وشواس کا کارن ہو کہ انہوں نے جو غلطی کری تھی اس لیے وہ ایسے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مورکھ مند سست اناڑی نہیں سمجھیں وہ بچہ بھگوان کے بچے ہیں وہ ان کی پہچان ہے ان کا سمبھاگیہ ہے بھگوان ہمیں چاہتے ہیں کہ بچوں کو ان کی غلطیوں سے سکھائیں اور اس کے بعد میں دھیرے دھیرے انہیں اچھا بنائیں جب ہم بچے سے پوچھیں گے بڑے ہو کے کیا بننا چاہیں گے تو اس سے بھی الجھن ہو سکتی ہیں جیسے ویکتی کی جیوتا کے لیے کرتا ہے یا جو وہ ہے نہ ویوسائے نہ ہی سمپتی کی پہچان سنگ یوگتا کی پریبھاشا ہو سکتی ہے ادھار کرتا ایک نمر بڑے تھے پرنتو ان کے جیون کی پریبھاشا شاید ہی دے سکیں ایک بچے کی مدد کی وہ کون ہے ان کی سوئن یوگتا کیا ہے کہ کیا کھوجے اسے کیسے کام ہے پراکرم یا ویوہار کی سراہنا کرتے ہیں پرنتو یہاں تک ان کے ویوہار وشواس کا پراتھمک پر کرنے کا کریندر رکھنا ہے کہ وہ کون بدھمان ہوگی کھیل کھیل میں اپنے بچوں کو ان کے کاریوں کو سہارا دینے کے دیکھنے کے نظریے کے ایک بدھیمان طریقہ ہے جیسے کہ ارچا درڑتا کٹنائی میں سنتولن اتیادی ہونے کرنے کا پروتساہت ہے جب ہم بچوں کے ساتھ کاریہ کرنے کو کہتے ہیں ہم ان کو ان کے لیے کرنے میں پروتساہت کرنے کے لیے بھی طریقے دیکھتے ہیں جیسا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب تم اپنے دل سے کرتے ہو جب بچوں کو اسکول سے رپورٹ کارڈ پراپت ہوتا ہے ہم اچھے انک لانے میں ان کی سراہنا کرتے ہیں پرنتو یہ اس کے لیے پریشرم کا مہان لابھ ہو سکتا ہے تم ہر کام کو کرتے ہو تم ہر ایک کو جانتے ہو کہ کٹن کاموں کیسے جان کر ختم کرنا ہے مجھے تم پہ گرو ہے تمہیں اسکرپچروں کو پڑھ کے بھگوان کے گنوں کو سیکھنا ہے اور کھانے کی میز پر ہمیں انہیں اسکرپچروں میں تم نے جانا ہے اس کے بارے میں ہمیں بات چیت کرنی ہے کیسے ہم نربھر ہیں کیسے ہم ایماندار ہیں اس پرکار وہ اپنے جیون سے لا سکتے ہیں اور اگر ہم اپنے بچوں کے سامنے سورگی پتا کی طرح جیسے ہمیں ہمارے پتا ہیں ان کے لیے پتا بنے تو اس پرکار وہ اچھی طرح سے سیکھ پائیں گے آج کی میٹرپیاں وشکر ماتا پتا کے لیے ہیں پر وہ سب کے لیے ہیں عیسی مسیح کے بننے کے لیے تمہارے جو کارے ہیں اس میں تم سفلتا پاؤ جب پھر تمہارے پریوار تمہارے دوسرے تمہارے پریوار کے لوگ تمہارے پیار کو محسوس کریں تو وہ بھگوان کے قریب آئیں یہ میری پرارتھنا ہے عیسی مسیح کے نام میں آمین
मेरे बारे में भाइयों बहनों, मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे यह संदेश देने में सहायता देगी। मैंने स्टेक्स और कॉन्फ्रेंस बोर्ड ब्रांचों में अपनी यात्राओं में एक उस तरह के आनंद की भावना पाई है सदस्यों से जिन्हें हम संत कहते हैं। प्यार और शांति की जो भावना हमें हमेशा महसूस करी है जब भी मैं जायन के स्टेकों में रहा हूँ। मैंने कई परिवारों से महसूस किया, कई वो ऐसे थे कि हाल के कन्वर्ट्स थे, और उनके लिए हम अपोस्टल पॉल के एफिसियन के शब्दों को दोहराते हैं, आओ कि तुम अब अजनबी नहीं हो, तुम संतों के साथ के हो, भगवान के घर वाले हो, और तुम अपोस्टलों और प्रॉफिटों की नींव के साथ इसे बनाओ जिसकी खुद नींव यीशु मसीह है। कुछ साल पहले मेक्सिको में पब्लिक अफेयर्स का जो विभाग है गिरजे का, उसके लिए हमें एक रेडियो टॉक शो में हमें निमंत्रण मिला। उस टॉक शो का लक्ष्य था कि वो दूसरे धर्मों के बारे में काम करें के बारे में लोगों को बताए भी। हम में से दो को गिरजे के लिए बताने के लिए बुलाया गया। कुछ समय बात करने के बाद प्रोग्राम डायरेक्टर था जो उस रेडियो का, उसने हमसे ये कहा, हमने दो एल्डरों से सुना है जो चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट लैटर-डे सेंट्स के हैं, और उसके बाद में आपके गिरजे का नाम इतना बड़ा क्यों है, आपका एक छोटा सा और नाम क्यों नहीं हो सकता है? मेरे और मेरे दोस्त ने मुस्कुरा के उस प्रश्न का जवाब दिया कि गिरजे का नाम आदमी द्वारा नहीं चुना गया था, वो मसीह के द्वारा दिया गया था एक प्रॉफिट को इन आखिरी दिनों में। फॉर दस शैल माई चर्च बी कॉल्ड इन द लास्ट डेज इवन द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स। मेरे गिरजे को इन आखिरी दिनों में द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स कहा जाएगा। जो प्रोग्राम डायरेक्टर ने उसने सम्मान से हमें कहा, हम इसलिए उसे बार बार पूरी तरह से दोहराएंगे। मुझे ध्यान नहीं है कि उन्होंने कितनी बार गिरजे के नाम को दोहराया, पर मुझे उस आत्मा के बारे में ध्यान थी जो उनके दिल में थी जब उन्होंने गिरजे का नाम ही नहीं लिया, पर उन्होंने गिरजे के लोगों के बारे में बात करी जो लैटर डे संत थे। हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं यीशु मसीह के गिरजे के सदस्यों के बारे में जिन्हें पहली बार कृष्ण के रूप में एंटियोक में बुलाया गया था, और उन्होंने एक दूसरे को अपने आप को संतों के रूप में बुलाया। उनके लिए कितनी बड़ी बात हुई जब अपोस्टल पॉल ने उन्होंने संतों के साथ के वाले लोग और भगवान के घर वालों के रूप में बुलाया गया ताकि वो संत बन सके। गिरजे के सदस्य जिस रूप से गॉस्पल को सुनकर प्रॉफिटों की राय पर चलते हैं वो उस प्रकार सैंक्टिटी पाते हैं। सदस्य जो हैं इस गिरजे के हर दिन पारिवारिक प्रार्थना, स्क्रिप्चरों की प्रार्थना, फैमिली हिस्ट्री में अपने आप को जोड़कर मंदिर में प्रार्थना करके धीरे धीरे अच्छे संत, पक्के संत बनते जाते हैं। जो ऐसे कई हैं जो अनंत परिवार को बनाने में लगे हुए हैं, और वो अपने समय निकालते हैं अपने बड़े बिजी स्केड्यूल से ताकि वो गिरजे से दूर जा सकें, उन्हें वापस गिरजे में ला सकें और भगवान के पास बुला सकें। उनमें से कई लोग हैं जो भगवान के मिशनरी के रूप में उन्हें बुलाव मिला है। ये मेरे भाई और बहनों उसमें बड़े भी हैं, बहन भी हैं, भाई भी हैं और कपल्स भी हैं। ये वही लोग हैं जो जानते हैं दया, चैरिटी, जो भगवान की सच्चा प्यार है, और उसके जानने के बाद वे उस पर अमल करते हैं। ये संत जो गिरजे के सदस्य हैं वो जानते हैं हमारे मसीह को की मुसीबतों को।
ہمیں یہ نہیں بولنا کہ ان کی انہوں نے بھی کئی دکھ دردوں کو جھیلا, انہوں نے اپنے آپ مرتیو کو ڈالا تاکہ وہ اس کے بندھنوں کو توڑ سکیں جو ان کے لوگوں کو باندھتی ہے, تاکہ وہ اپنے آپ ان دردگتیوں کو ڈال سکیں جو ان کے سنتوں پر آتی ہیں, تاکہ وہ اس پرکار بن سکیں وہ اپنے لوگ کے کو ٹھیک کر سکیں. پچھلے کئی سالوں میں میں نے اب کئی لوگوں کے دکھ دردوں کو دیکھا ہے, ان میں سے کئی سنت ہیں, ہم نے لگاتار ان کے لیے پرارتھنا کری ہیں بھگوان کے ان کے وشواس کو کم نہیں ہونا دے. ہم ان کی جیکب جو بک آف مورمن کے پروفٹ ہیں ان کے دلاسا دینے والے شبدوں کو دہراتے ہیں, میرے پیارے بھائیوں بھگوان کے پاس آؤ جو پوتر ہیں, یہ دھیان رکھو کہ ان کے یہ راستے صحیح ہیں, یہ دھیان رکھو کہ آدمی کا جو راستہ ہے وہ دکھ بھرا ہے اور وہ پر اس کے سامنے ہیں, اور جو پر جب بھگوان کا راستہ ہے وہ اسرائیل کے پوتر ویکتی کے دوارا بنایا گیا ہے, اس کا کوئی سیوک نہیں ہے, اسے کوئی بھی جلاسا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ بھگوان اس کا نام ہے, اور جو بھی چاہے گا وہ اسے دکھایا جائے گا. یہ پتا ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح کی مصیبتیں ہمارے آس پاس ہوں, جو مسیح کا جو گاسپل ہے اور اٹونمنٹ ہے اس سے ہماری شانتی اور شکتی بڑھتی ہے. ہاں بھائیوں اور بہنوں, جو انت شانتی آتی ہے آتما کے دوارا, اور وہ جو بھگوان انہیں اپنے وشواسی سنتوں کو دیتے ہیں, انہوں نے کہا ہے میں تمہیں شانتی تمہارے ساتھ میں چھوڑتا ہوں, تمہارے ہاتھ اپنے میں دیتا ہوں اور تمہارے دل کو دکھ نہیں ہو اور اسے بھائی بھی نہیں ملے. کئی سالوں تک میں نے سدسیوں کے وشواس کو دیکھا جو بھگوان کے پلان میں اپنے وشواس کے دوارا مسیح کے اٹونمنٹ میں بلیدان دوارا, جو انہوں نے بڑی درڑھ نشچے سے ان کاموں کیا اور اس راستے پہ چلتے پڑے جو بھگوان کی اور جاتا ہوں. میرے پاس شبد نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو آبھار جتا سکوں ان وشواسی سدسیوں کے لیے جن کے ساتھ میں اور جن کے کاموں کو میں نے جانا ہے. ہم جانتے ہیں کہ گاسپل کا جو ہماری سمجھ ہے وہ اس کے ستیہ کے بارے میں بیان من بڑھنا چاہیے, ہمیں مصیبتوں اور ان سے اور ہمیں دلاسا ملتی ہے. بھگوان سے ہمیں وعدہ ملا گیا ہے کہ ان کے سنتوں سے ہی کوئی مصیبتیں ایسا نہیں کہ نہیں ملیں گی, وہ سب کے لیے ملیں گی تاکہ ہم اس سے اور پکے ہو سکیں. اور ہم جان سکے ہیں اور یہ جان سکے کہ بھگوان نے ہماری مدد کری ہے جب ہم مصیبت سے پار کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور بہنیں, ہم کتنے آشیروادت ہیں کہ ہم نے ان آخری دنوں میں ایسے آشیروادوں کو پایا ہے, اور ہم کتنے آشیروادت ہیں کہ ہمارا جو بیان ہے مسیح کا وہ پچھلی اور آنے والے پروفیٹوں کے ساتھ میں ہے. میں بیان دیتا ہوں کہ جو اسرائیل کا پوتر والا ہے وہ اس گرجے کا نردیشن دیتا ہے جو چرچ آف جیزس کرائسٹ لٹری سینٹس ہے, اور ہمارے پیارے پروفیٹ تھامس مانسون کا بھی اس کا نردیشن دیتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.
I'm preparing my talk for this.
وارتہ تیار کرتے سمے میرے پتا کا انپیکشت فون کال آیا. انہوں نے کہا اس صبح میرا چھوٹا بھائی سوتے ہوئے مرتیو ہو گئی اس کی. میرا بھائی میں ہدے ٹوٹا, وہ کیول 51 ورش کا تھا. मैं उसके जीवन के कुछ घटनाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। युवक होते हुए वह आकर्षक था, सबसे मोलजोल रखता था और इंजील में वफादार था। उसने प्रचारक सेवा और मंदिर किश में शादी की। वो एक बेटा और बेटी से आशीषित हुआ, पर फिर एक कमजोरी से वो हारा। उसने भोग विलास के जीवन अपनाया, अपना स्वास्थ्य, विवाह और गिरजे की सदस्यता गंवाई। वो घर से दूर रहने लगा। 10 साल से ज़्यादा आत्मविनाश के मार्ग पर चला, पर मसीहा उसे भूला नहीं, ना ही उसे त्यागा। आखिर निराशा के दर्द ने उसे विनम्रता की आत्मा को का भाव पैदा किया। उसका गुस्सा, विद्रोह, आक्रमण गायब होने शुरू हुआ। उड़ाऊ पुत्रों के समान वो अपने आप में आया, मसीहा के निकट आने लगा और फिर घर लौटने लगा। वो पिस्तावर के मार्ग चला। वो आसान नहीं था। गिरजे से 12 वर्ष परे होने के बाद फिर उसका बपतिस्मा हुआ। बाद में पुरोहित्य और मंदिर के आशीष भी लौटे। वो ऐसी स्त्री पाने में आशीषित हुआ जिसने उसके स्वास्थ्य चुनौतियों को नज़रअंदाज किया और मंदिर में मुहरबंद हुए। साथ उनके 2 बच्चे हुए। उसकी वफादारी उसने वफादारी से बिशापविक में कई साल सेवा की। मेरा सोमवार 7 मार्च को की सुबह वो मर गया। उसके पूरे शुक्रवार शाम वो पत्नी के साथ मंदिर गया था। रविवार सुबह उसने पुरोहित्य का पाठ पढ़ाया था। उस रात वो जिंदगी में आखिरी बार सोया। मेरे भाई के जीवन की क्षतिपूर्ति के चमत्कार के लिए आभारी हूँ। मसीहा की क्षतिपूर्ति हम सभी को उपलब्ध है। हम पछतावे द्वारा क्षतिपूर्ति पाते हैं। पछतावा करने पर प्रभु हमें पुरानी गलतियां भूलता है। देखो, वो जो पापों को पछताता है उसे माफ़ी मिलती है और मैं प्रभु उस पाप को भूलता हूँ। इससे हम पहचानेंगे अपने पापों से कोई पछताया है या नहीं। वो उन्हें मानकर त्याग करेगा। हम सभी किसी को जानते हैं जिसकी गंभीर चुनौती आया हो, जो भटके हो। वो शायद कोई दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता, बच्चा या पत्नी है। वो शायद तुम भी हो। मैं सबसे बात करूँगा। तुम से भी क्षतिपूर्ति की चमत्कार के बारे में। मसीहा आदम के पतन से मनुष्य को बचाने आया। मसीहा की इंजील में सब कुछ मसीहा ईश्वर के बेटे क्षतिपूर्ति की ओर दर्शाता है। मुक्ति की योजना बिना क्षतिपूर्ति के अमल में नहीं आ सकती। इसलिए भगवान खुद दुनिया के पापों की क्षतिपूर्ति करता है ताकि दया की योजना अमल में आए और न्याय की मांग पूरी हो, ताकि ईश्वर सिद्ध रहे और दयालु भी। क्षतिपूर्ति का बलिदान परमेश्वर के पाप रहित बेटे के बिना और कोई नहीं कर सकता था। क्षतिपूर्ति असीमित और शाश्वत होनी जरूरी थी ताकि वो सभी लोगों को लागू हो। अपनी पीड़ा और मृत्यु द्वारा मसीहा ने सभी के पापों की क्षतिपूर्ति की। वो गेत्सेमनी में शुरू हुई थी, क्रूस पर जावी रही और मृत्युत्थान से समाप्त हुए। हाँ, उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मार दिया जाएगा, मांस मृत्यु से शासित होगा। बेटे की मर्जी पिता की मर्जी निगल लेगी। उसके प्रायश्चित के बलिदान द्वारा उसकी राह पाप के लिए अर्पण हुई। परमेश्वर के इकलौते पुत्र होते के नाते उसने शारीरिक मृत्यु पर शक्ति पाई, इसलिए वो जीवित रहा जब उसे मनुष्य के हाथ के बाहर की व्यथा सही। देखो, उसके लोगों की दुष्टता और घृणा के लिए उसकी व्यथा इतनी थी कि उसके रूम रूम से खून बहा। फिर भी सिर्फ उस सभी मनुष्यों के पापों की कीमत नहीं चुकाई, उसने खुद पर उनके दर्द और रोग भी लिए। उसने खुद पर उनकी दुर्बलताएं ली ताकि उसकी कृपा उन पर उनसे भर जाए। वो और शरीर में जान पाए कि उसके जानों लोगों के दुर्बलता कैसे सहायता करे। मसीहा ने पूरी उसने पूरे पूरा पूरा का बोझ सहा, पापों की पीड़ा और शोक। उनकी क्षतिपूर्ति द्वारा वो सिर्फ पापियों को चंगा नहीं करते, पर उन मासूमों को भी जिनको जिन उनके जो उनके शिकार हुए हैं। जैसे वो मासूम लोग मासूमों की क्षतिपूर्ति द्वारा और भक्ति द्वारा पापियों को माफ़ करते हैं, वो भी चंगे होते हैं। हम सब पापों के बोझ से रहित होना चाहते हैं। हम पर खताओं और पापों से पाप आते हैं, पछतावा करने से मसीह वो बोझ निकालता है। उसकी क्षतिपूर्ति द्वारा हमें पाप माफ होते हैं। नरकवास के पापों के अलावा क्षतिपूर्ति के आशीष सब पा सकते हैं। हर वक्त पाप जितना भी बड़ा या छोटा हो, मसीह हमें पछताने बुलाता है ताकि हमें पापों का पूरा बोझ न उठाना पड़े। पछताओ, नहीं तो तुम्हारी पीड़ा भारी होगी, इतनी भारी तुम्हें पता नहीं। हाँ, कितनी कठिन सहने तुम्हें पता नहीं। देखो, मैंने प्रभु ने सभी बातें सबके लिए सही है ताकि उन्हें वो सहनी न पड़े अगर वो पछताते हैं। अगर वो नहीं पछताएंगे, उन्हें मेरी तरह भुगतना पड़ेगा जो भुगतने पे मैं प्रभु जो सबसे श्रेष्ठ हूँ दर्द से कांपा और रोम रोम से खून बहा और दोनों शारीरिक और आत्मिक व्यथा सही। मसीह जो पापों के घाव भरता है पूछ रहा है, क्या तुम मेरे पास लौटकर पछताकर परिवर्तित नहीं होगे ताकि मैं वो घाव भर पाऊँ। मसीह आत्मा के घाव भरने वाला महान वैद्य है। नरकवास के पापों के अलावा ऐसा कोई खता नहीं है या शोक नहीं जो उसके वो क्षतिपूर्ति नहीं भर सकती। जब हम पाप करते हैं, शैतान हमें नवेश करते हैं, पर मुक्तिदाता हमको छुटकारा पेश करता है। हमने जो भी गलती की हो, जिंदगी पर गौर करते क्यों, क्या तुम्हें कुछ बदल करने की ज़रूरत है? ऐसी कोई गलती है जिसकी तुम्हें प्रायश्चित करने की ज़रूरत है? अगर तुम पाप, अफसोस या क्रोध महसूस कर रहे हो, मैं राहत पाने निमंत्रण देता हूँ। पछताओ, पाप त्याग करो, ईश्वर से प्रार्थना की माफ़ी मांगो। तुमने घायल किए लोगों से माफ़ी मांगो, दूसरों को और खुद को भी माफ़ करो। ज़रूरत हो तो बिशप के पास जाओ जो प्रभु के प्रतिनिधि है और सहायता देगा उस फिर साफ होने के प्रयास में। प्रार्थना और शास्त्र अध्ययन में खो जाओ। ये करने पर तुम आत्मा का पवित्र प्रभाव महसूस करोगे। मसीह ने कहा, अपने आप को पवित्र बनो, दिल साफ करो और हाथ साफ करो ताकि मैं तुम्हें साफ कर पाऊँ। हम उसकी क्षतिपूर्ति की शक्ति द्वारा साफ बन सकते हैं। मसीह हमारी पिता के सामने वकालत करेगा, पिताजी उसकी पीड़ा और मौत देखिए जिसने कोई पाप नहीं किया, जिससे तुम खुद बेहद खुश थे। तुम्हारे बेटे के खून को देखो जो बहा जिसे तुमने दिया ताकि तुम्हें गौरव मिले। इसलिए पिताजी, मेरे इन भाइयों को बचाइए जो मुझ पर विश्वास करते हैं ताकि वो मेरे साथ अनंत जीवन पाए। हम सबको नैतिक चुनाव का उपहार दिया गया है। मनुष्य मुक्त है, आज़ादी और शाश्वत जीवन चुनने मनुष्य जाति की महान मध्यस्थ द्वारा या कैद और मौत शैतान की शक्ति द्वारा। वर्षों पहले मेरे भाई ने उस स्वतंत्रता द्वारा ऐसा जीवन चुना जिससे उसने स्वास्थ्य, परिवार और सदस्यता खोई। वर्षों बाद वो उसी स्वतंत्रता द्वारा पछताया, जीवन को मसीह की सूचना अनुसार बदला और क्षतिपूर्ति की शक्ति द्वारा फिर पैदा हुआ। मैं क्षतिपूर्ति के चमत्कार की गवाही देता हूँ। मैंने उसकी घाव भरने की शक्ति के बारे में मेरे भाई के जीवन में और मेरे जीवन में देखी है। घाव भरने की क्षतिपूर्ति की शक्ति हम सबको उपलब्ध है। मैं बयान देता हूँ, ईसा मसीह है हमारे घाव भरने वाला। मैं दुआ करता हूँ हम सब वो निमंत्रण स्वीकारेंगे। मेरे पास लौट आओ, पछताओ और परिवर्तित हो जाओ ताकि मैं तुम्हारे घाव भर पाऊँ। عیسیٰ مسیح کے نام آمین.
I have been so moved.
Bahut hi
every note of music sung and
har gaan aur har shabd jo bola gaya hai, main prarthna karta hu ki main bol sakun.
Before leaving Nauvoo in the winter
1846 ki sardi mein Nauvoo se jane ke pehle President Brigham Young ne ek sapna dekha جس میں انہوں نے ایک سورگیہ دیوت دیکھا جو ایک کون کے آکار کے پہاڑ پر کھڑا تھا پشچم میں کہیں اور نیچے گھاٹی کی اور سنکیت کر رہا تھا. جب وہ 18 مہینوں بعد سالٹ لیک گھاٹی میں آئے انہوں نے دیکھا جہاں ہم ابھی جمع ہوئے ہیں اسی تھوڑی اوپر وہی پہاڑ جو انہوں نے دیویہ درشن میں دیکھا تھا. جیسے اس من سے پہلے بھی کہا گیا ہے بردر برگم نے کچھ نیتاؤں کے ساتھ پہاڑی کی چوٹی تک گئے اور اسے کہا انسائن پیک ایک نام جو دھار میں کرد سے بھرا ہوا ہے ماڈرن اسرائیلٹس کے لیے. 2500 سال پہلے پروفیٹ آئزیا نے انتم دنوں کے لیے گھوشنا کی تھی پربھو کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کے اوپر ستھاپت کیا جائے گا اور وہاں سے دیشوں کے لیے جھنڈا لہرائے گا. اتہاس میں اس سمے وہ بھوشیہ وانی کی پورتی دیکھتے ہوئے سبھی بھائی چاہتے تھے کہ وہ کوئی جھنڈا لہرائیں تاکہ دیشوں کے لیے چن کے وچار کو وہ سچ مچ میں درشا سکیں. ایلڈر ہیبرٹ سی کمبل نے اپنے جیب سے ایک پیلا رومال نکالا. برادر برگم ینگ نے اسے ایلڈر ولرڈ رچرڈز کی چھڑی سے باندھا اور پھر اس جھنڈے کو گاڑا گھوشنا کرتے ہوئے کہ گریٹ سالٹ لیک کی گھاٹی اور اس کے چاروں اور کے پہاڑ اس بھوشیہ وانی کی جگہ اس پربھو کا سندیش انتم دنوں میں جائے گا. بھائیوں اور بہنوں یہ جنرل کانفرنس اور باقی ارد وارشک سمیلن دنیا کو دی گئی اس گھوشنا کا وستار ہے. میں گھوشنا کرتا ہوں کہ پچھلے 2 دنوں کے سمیلن کے اور ثبوت ہے جس طرح ہمارا بھجن کہتا ہے زائن کا ماپتن فرایا گیا اور ماپتنڈ کے 2 ارتھ جان بوجھ کر ہیں. یہ کوئی سنیوگ نہیں ہے کہ جنرل کانفرنس کا سندیش دا اینڈ سائن نام کی ایک میگزین میں چھپتے ہیں. جیسے ہمارے کانفرنس کا انت آ رہا ہے میں آپ سے آنے والے دنوں میں سوچنے کے لیے کہتا ہوں کیول جو سندیش آپ نے سنے ہیں انہیں کے لیے نہیں بلکہ کانفرنس کے انوکھے آبھاس کے لیے بھی جو ہم لیٹر ڈے سینٹس مانتے ہیں کہ یہ کانفرنس ہے اور جو ہم دنیا کو آمنترت کرتے ہیں انہیں سننے اور دیکھنے کے لیے. ہم گواہی دیتے ہیں سبھی دیشوں جاتیوں بھاشاؤں اور لوگوں کی ہمارے سمے اور آج کے دن جو سندیش آپ نے سنے ہیں وہ ہولی اسپرٹ کی دشا دوارا دیے گئے ہیں. پربھو کی اچھا پربھو کا سندیش پربھو کی آواز اور ادھار کے لیے بھگوان کی شکتی. شاید آپ کو پہلے سے پتا ہے اگر نہیں تو پتا ہونا چاہیے کوئی بھی آدمی یا عورت جو یہاں سندیش دیتے ہیں انہیں کوئی بھی ٹاپک نہیں دیا جاتا. ہر کوئی ورت اور پرارتھنا کرتا ہے پڑھتا اور تلاش کرتا ہے چالو کرتے ہیں پھر رکتے ہیں اور پھر چالو کرتے ہیں جب تک وہ یقین نہ ہو جائے کہ اس کانفرنس کے لیے اس سمے ان کے چنے ہوئے ٹاپک پر پربھو چاہتے ہیں کہ وہ بولیں ویکتیگت کامنا یا انوبھوتی کے بجائے. ہر آدمی یا اور عورت جسے آپ نے اپنے جنرل کانفرنس کے پچھلے 10 گھنٹوں میں سنا ہے، ہر کسی نے اس احساس کے پرتی سچا رہنے کی کوشش کی ہے، ہر کوئی رویا ہے، چنتا کی ہے، اور سچے دل سے ان کے وچار اور ابھیویکتی دوارا نردیش کیے جائیں، اس کے لیے پرارتھنا کی ہے۔ اور جس طرح بریگم ینگ نے ایک دیویہ دوت کو اس جگہ پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا، اسی طرح میں ان لوگوں کو دیویہ دوتوں کے روپ میں یہاں کھڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ چرچ کے جنرل آفیسرز کے میرے بھائی اور بہن اس ویورن سے بے چین ہوں، لیکن ایسے ہی میں انہیں دیکھتا ہوں، نشور دوت دیویہ سندیشوں کے ساتھ، آدمی اور عورت جن کے پاس شاریرک دھن اور پریوار سمبندی کٹھنائیاں ہیں آپ کی اور میری طرح، لیکن جنہوں نے اپنے وشواس کے ساتھ اپنی زندگی کو اپنی کالنگ میں اور اپنے نہیں بلکہ بھگوان کے سندیش کے پرچار میں لگا دیا ہے، اور ان سندیشوں کی بہو روپتا کے بارے میں سوچئے، یہ اور بھی زیادہ اچمبک ہے کیونکہ کیول سورگ دوارا انہیں دشا مل رہی ہے، لیکن یہ بہو روپ کیوں نہیں ہوں گے؟ زیادہ تر ہماری منڈلی کو دکھ رہی ہے یا نہیں، چرچ کے ممبر ہیں، لیکن سنچار کے نئے طریقوں سے اور ادھک درشکوں کا حصہ چرچ کے ممبر نہیں ہیں ابھی تک، اس لیے ہمیں انہیں سندیش دینا چاہیے جو ہمیں اچھے سے جانتے ہیں اور جو ہمیں بالکل بھی نہیں جانتے۔ چرچ کے اندر ہم بچوں سے، یووا سے، بیچ کی عمر والوں سے اور بزرگوں سے بولنا چاہیے، ہمیں بولنا چاہیے پریواروں سے اور ماتا پتاؤں سے اور گھر پر بچوں سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، بچوں کے بنا والے سے اور جو گھر سے بہت دور ہیں۔ جنرل کانفرنس میں ہم ہمیشہ وشواس، آشا، پروپکار اور عیسیٰ مسیح کے انت سندیشوں پر زور دیتے ہیں، اور ساتھ میں آج کے یگ کے نیتک مدوں پر اسپشٹ طرح سے بولتے ہیں۔ اسکرپچرز میں ہمیں آدیش ملتا ہے، اس پیڑھی کو پشچاتاپ کے بجائے اور کچھ نہ بولنے کے لیے، ساتھ ہی میں ہمیں نمر اور ٹوٹے دل والوں کو اچھی خبر سننے کے لیے آدیش دیا گیا ہے، چاہے ان کے جو بھی روپ ہوں۔ کانفرنس کے سندیش بندیوں کو مکتی دیتے ہیں اور گھوشنا کرتے ہیں مسیح کے ان نہ کھوجنے والے دھن کے لیے۔ ان بہوروپ سندیشوں میں ہر کسی کے لیے کچھ ہے۔ اس وشے میں پریزیڈنٹ ہیرلڈ بی لی نے کہا، کئی سال پہلے سب سے اچھے طریقے سے بتایا، گاسپل پیڑت لوگوں کو آرام دیتے ہیں اور آرام کرنے والوں کو پیڑا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جنرل کانفرنس میں دی گئی سیکھ مسیح کی سیکھ جیسے دیالو اور کھلے ہاتھوں کے ساتھ ہو، انوشاسن کی شکشا کو یاد رکھتے ہوئے جو ان کے سندیشوں میں ہمیشہ تھا۔ سب سے پرسدھ سندیش جو دیا گیا، عیسیٰ شروعات کرتے ہیں آشیرواد کی گھوشنا کے ساتھ جنہیں ہم سبھی پانا چاہتے ہیں، آشیرواد کے وعدے جنہیں اسپرٹ کی کمی ہے، جن کا دل صاف ہے، شانتی بنانے والوں کے لیے اور جو ونمر ہیں، یہ شکشا آتما کو شانتی دیتے ہیں۔ لیکن اسی سندیش میں بچانے والے اور بتاتے ہیں کہ کتنی اور محنت چاہیے شانتی بنانے والوں اور صاف دل والوں کے لیے۔ تم نے سنا ہے ان سے جو پہلے تھے، تم مارو گے نہیں، انہوں نے دیکھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی کے ساتھ غصہ ہے، نرنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح تم نے سنا ہے ان سے جو پہلے تھے کہ ویابیچار مت کرنا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی کسی عورت پر کودرشتی ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں ویابیچار کر چکا ہے. جیسے ششیوں کی راہ آگے بڑھتی ہے وہ راہ پتلی ہوتی رہتی ہے جب تک ہم اس گھٹنے ٹیک دینے والی گھوشنا سندیش کے شکھر پر ہوتی ہے. اس لیے اتم بنو جس طرح تمہارے پتا جو سورگ میں ہیں اتم ہیں. جو پہلے آسان تھا سچا انویائی بننے کٹھن ہو جاتا ہے. سپشٹ ہے کہ جو کوئی مانتا ہے کہ عیسیٰ نے کوئی غلطی نہیں کا سندیش سکھایا انہوں نے چھوٹے اکشر نہیں پڑھے. نہیں, انویائیوں کے لیے چرچ ایک فاسٹ فوڈ کی جگہ نہیں ہے جہاں ہم ہمیشہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. ایک دن ہر گھٹنا ٹکے گا اور ہر جیب مانے گی کہ عیسیٰ ہی مسیح ہیں اور کہ ادھار کیول ان کی طرح سے آتا ہے. اس جنرل کانفرنس میں کٹھور سندیشوں سے سیکھنے کے لیے اور آرام دینے والے سندیشوں کو اپنانے میں ہم آشواسن دیتے ہیں کہ جب ہم مشکل والے باتوں کو بولتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی پورنوگرافی نہیں دیکھ رہا ہے یا شادی نہیں کرنا چاہتا ہے یا وید شاریرک سمبندھ نہیں کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی سبت نہیں توڑ رہا ہے لیکن ہمیں چیتاونی دیں جو یہ کام کر رہے ہیں چاہے وہ دنیا میں جہاں بھی ہوں. تو یدی آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, یدی ادھارن کے طور پر یدی آپ گھر میں بچوں کی گڑ بڑیوں کے باوجود فیملی ہوم ایوننگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اونچے انک دیجیے جب ہم اس وشے پر آئیں گے اور کہ دوسرے سندیش کے لیے سنیے جس پر آپ کو اور کام کرنے کی ضرورت ہے. یدی ہم اسپرٹ دوارا سکھائیں اور آپ اسپرٹ دوارا سنیں تو ہم میں سے کوئی آپ کی اپنی استھتی کو چھوئے گا. آپ کو ایک ویکتیگت سندیش دیں گے آپ کے لیے. بھائیوں اور بہنوں, اس جنرل کانفرنس میں ہم اپنی ٹیسٹیمونی دیتے ہیں جو باقی ٹیسٹیمونیوں کے ساتھ ہیں جو آئیں گی, کیونکہ بھگوان کسی نہ کسی طرح سے اپنی آواز ضرور سنوائیں گے. میں نے تمہیں لوگوں کو گواہی اور چیتاونی دینے کے لیے بھیجا ہے, پربھو نے اپنے پروفیٹ سے کہا. اور تمہاری ٹیسٹیمونیز کے بعد آتی ہے ٹیسٹیمونی بھوکمپ کی, طوفانوں کی, بجلیوں اور آندھیوں کی اور سمندر کی لہروں کی آواز انہیں تٹ سے آگے بڑھتی ہوئیں اور دیویہ دیوت زور سے روئیں گے, بھگوان کے باجے کو بجائیں گے. یہ نشور دوت جو اس منچ پر آئے ہیں ہر کسی نے اپنی طرح سے بھگوان کے باجے کو بجایا ہے. ہر سندیش ہمیشہ پریبھاشا سے دونوں ایک ٹیسٹیمونی اور چیتاونی جس طرح پرکرت اپنی طرح سے دونوں گواہی اور چیتاونی دے گی آخری دنوں میں. پرکرت پیار اور چیتاونی سے اپنی ٹیسٹیمونی دے گی. جلد ہی پریزیڈنٹ مانسن منچ پر آ کر کانفرنس کا انت کریں گے. کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں اس پیارے ویکتی کے بارے میں؟ سب سے بڑے اپوسل اور آج کے پروفیٹ جو اتر داتوے میں نے بتائے ہیں انہیں دھیان میں رکھتے ہوئے یہ سپشٹ ہے کہ پروفیٹس کا جیون آسان نہیں ہوتا اور پریسیڈنٹ مانسن کا جیون آسان نہیں ہے۔ 36 سال کی عمر میں جب یہ اپوسل بنے، ان کے بچوں کی عمر تھی 12, 9, اور 4۔ سسٹر مانسن اور ان بچوں نے اپنے پتی اور پتا کو چرچ اور اس کے کام کے لیے اب 50 سال سے زیادہ کے لیے دے دیا ہے۔ انہوں نے بیماری اور ضرورتوں سے، جیون کی ٹھکراؤں اور چوٹوں سے جن سے ہر کوئی گزرتا ہے، اور کچھ جو بنا شک کے آگے ہیں، لیکن پریسیڈنٹ مانسن ہمیشہ اس سب کے باوجود خوش رہتے ہیں۔ ان کا وشواس اور سہن شکتی مہان ہے۔ پریسیڈنٹ، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو آدر دیتے ہیں۔ آپ کی بھکتی ہم سبھی کے لیے ادھارن ہے۔ باقی 14 اپوسل، ساتھ میں منچ پر باقی نیتا درشک جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اور دنیا بھر میں جمے ہوئے باقی لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو سسٹین کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس کام میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ آپ ان دیویہ دوتوں میں سے ہیں جنہیں دنیا کی استھاپنا کے پہلے چنا گیا تھا۔ پوری دنیا میں عیسیٰ مسیح کے گوسپل کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے آپ بہت ہی اچھا کر رہے ہیں۔ اس گوسپل جسے سکھایا جا رہا ہے اور اسے جو ادھار ہوتا ہے، اس کی میں گواہی دیتا ہوں اس مہان نام، پربھو کے نام میں، عیسیٰ مسیح کے نام میں۔ آمین۔
اب جب ہم اس سمیلن کے سماپن کرتے ہیں، ہم سندر اور پرانادائک سنگیت کے لیے منٹپ کا ایک منڈلی، پی وائی یو آئی رہو کی سنیکت کا ایک منڈلی، اور آگڈن یوٹا اور لوگن یوٹا سستان کی پوروہتیہ کا ایک منڈلی، اور ان کے سنچالوں کو اور باتک کو کا دھنیواد ویکت کرتے ہیں۔ اب ان کا بھی دھنیواد ویکت کرتے ہیں جنہوں نے ان کاریکرم کو کسی بھی روپ سے بھاگ لیا ہے۔ اس ستر کے انتیم وقت ہمارے پریہ بھوشیہ وقت ادھیکش تھامس ایس مانسن ہو گئے۔ ادھیکش مانسن کے بولنے کے پشچات گائک منڈلی سماپن ستوتی گیت مور ہولینس کی می گائے گی۔ سماپن پرارتھنا ستر کے ایلڈر کینٹ پی واٹسن دوارا کی جائے گی۔
My brothers and sisters,
mere bhaiyo aur behno, is sammelan ki samapti par mera hriday bhara utha hai. Humne bahut ayat se prabhu ki atma ko mahsoos kiya. Main un sabhi jagah sadasyon ko jinhone isme bhag liya aur jinhone prarthana ki hai, unka dhanyawad vyakt karta hai. Kai sandesh سندیش ہم نے سنے، انہیں لمبے سمے تک یاد رکھے۔ जब हम इंसान और लियाहुआना पत्रिकाओं के उन अंकों प्राप्त करते हैं जिनमें ये संदेश छपेंगे, खास हम इन्हें पढ़े और अध्ययन करें। एक बार फिर सब सत्रों के संगीत शानदार था। मैं उन सभी को अपना व्यक्तिगत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ जो अपने हुनर को हमारे साथ बांटते हैं और हमारे विकास की प्रक्रिया में हमें मनोभव स्पर्श भी प्रेरणा देते हैं। हमने हाथ उठाकर उन भाइयों का समर्थन किया है जो इस सम्मेलन के दौरान नए पदों पर नियुक्त किए गए। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि स्वामी की सेवा करते समय हम उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक है। मैं अपने निष्ठावान सलाहकार अध्यक्ष हेनरी बी आयरिंग और अध्यक्ष डीटर एफ उक्टर को अपने प्रेम और आभार प्रकट करते हैं। वो विवेकशील हैं और बुद्धिमान हैं। उनके सेवाएं अनमोल हैं। 12 प्रेरितों की परिषद के भाइयों के मैं प्रेम और समर्थन कर देता हूँ। वो अत्यंत प्रभावशाली रूप से सेवा करते हैं और काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। मैं 70 और कार्यकारी अध्यक्षता को सदस्यों को भी अपना प्रेम कर व्यक्त करता हूँ। हम विश्व में आज बहुत सी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ हमारा स्वर्गीय पिता हमारे बारे में सचेत हूँ। वो हम में से हर को प्रेम करता है और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं और उसको आज्ञा को पालन करने प्रयास करते हैं, वो हमें आशीष देगा। हमारा गिरजाघर का घर विश्वव्यापक है। हमारे सदस्य पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। जिन राष्ट्र में हम रहते हैं उसके अच्छे नागरिक बने और अपने समाज में अपने धर्म और अन्य धर्म के लोगों की मदद करके अच्छी पड़ोसी बने। हम जहाँ भी जाते हैं और जो भी करते हैं उसे ईमानदारी और निष्ठा के उदाहरण बने। भाई और बहनों, मेरे लिए और गिरजाघर के सभी जनरल अधिकारी के लिए की गई आपके प्रार्थनाओं का धन्यवाद। प्रभु के कार्य को आगे बढ़ने के लिए हम आपका और आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के बहुत आभारी हूँ। जब आप अपने घरों के वापस जाते हैं, आप सुरक्षित पहुँचे हैं। स्वर्ग की आशीष आपसे हर के साथ हो। अब जाने से पहले मैं आपके साथ उदारकर्ता और उसके महान बलिदान के लिए अपने प्रेम को बांटना चाहता हूँ। 3 सप्ताह में पूरा मसीह समाज ईस्टर मनाएगा। मैं सोचता हूँ कि हम में से कोई भी उसके पूरी तरह से कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी मसीह ने हमारे लिए गतिश्मनी में किया गया था, लेकिन मैं अपने जीवन के हर दिन उसके बलिदान का आभारी रहता हूँ जो उसने हमारे लिए किया है। उस आखिरी छेद पर वह उस कार्य से पीछे हट सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सभी कष्टों को सहा ताकि वह सबों को बचा सके। ऐसा करने में उसने हमें इस नश्वरता से आगे का जीवन दिया। उसने हमें आदम के पतन से बचा लिया सका। आपनी आत्मा की गहराई से मैं उसके आभारी हूँ। उसने हमें जीना सिखाया। उसने हमें मरना सिखाया। उसने हमें उद्धार को सुरक्षित किया। समाप्त करने के पहले मैं एमिली हैरिस द्वारा लिखे मर्मस्पर्शी शब्दों को आपके साथ बांटता हूँ जो स्तर की मेरी अनुभूतियों को बहुत अच्छी तरह व्यक्त करता है। वस्त्र जिसमें एक लपेटा गया था खाली है। वस्त्र वहां पड़ा है, नया और सफेद और स्वच्छ। द्वार खुला हुआ है, पत्थर लुढ़का दिया गया है। मेरे और मैं दूतों की उसकी प्रशंसा गाते हुए सुन सकती हूँ। प्रस्ता उसे पकड़ कर नहीं रख सकता, पत्थर उसे रोक नहीं सकता। उस खाली कक्ष के भीतर ये शब्द गुंजते हैं, वो यहाँ नहीं है। वस्त्र जिसमें उसे लपेटा गया था वो खाली है। वस्त्र वह रखा है, नया और सफेद और स्वच्छ, और वो हालेलुया वो खाली है। मेरे भाई और बहनों, आपकी मेरी आशीष मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
Our dearest Heavenly Father,
Hey Parampita, इस कॉन्फ्रेंस इस महान कॉन्फ्रेंस के अंत में हम आपको अपना प्यार और धन्यवाद देते हैं. आपकी अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं. आपको आपके बेटे के लिए हम धन्यवाद देते हैं. आपको गॉस्पल के रेस्टोरेशन के लिए धन्यवाद देते हैं. आपको प्रॉफिट के लिए प्रार्थना करते हैं. आपसे प्रेसिडेंट और सिस्टर मॉन्सर उनके परिवार को आशीर्वाद दीजिए और फर्स्ट प्रेसिडेंसी और कोरम ऑफ द 12 के लिए धन्यवाद देते हैं आपको जो आराम देता है. प्रार्थना करते हैं आपसे जो बातें हमने सुनी है इस कॉन्फ्रेंस में चाहे जहां भी हम रहते हैं और जैसे भी काम करते हो कि हम एक दूसरे की मदद करें और गॉस्पल का प्रचार करें और गरीबों और जिन्हें जरूरत है उनकी मदद करें. प्रार्थना करते हैं आपसे मुख्यतः जिन्हें आपकी जरूरत है आपके बेटे ईसा मसीह के नाम में. आमेन.
This has been a broadcast of the 181st Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.